الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن عظم اللسان بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، الحمدللہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، خدمات، ذکر و عبادت حضرات انبیاء کے کام لے کر آئے، اس کی برکات سے ہم الحمدللہ اپنی آنکھوں سے، اپنے گھروں میں بھی، اپنی ذاتوں میں بھی، اپنے معاشروں میں بھی، اپنے خوشیوں میں بھی، اپنے غمیوں میں بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ان اعمال کی، ان محنتوں کی برکتیں ہیں. بہت سارے آج بھی مسلم علاقے ایسے بھی ان کے یہاں نکاح آنے رات میں ہوتی ہے، شامیانوں میں ہوتی ہے، تفصیل کسی کے ساتھ ہوتی ہے. سارا کا سارا اس طرح کرنا سنت کے خلاف ہے. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، حافظ ابی سفیان کے نکاح میں آئے، مسجد میں ہوا، حدیث میں بتایا اعلان کے ساتھ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر کا اسپیکر کرو اور اعلان کرو، یہ نہیں. اپنے متعلقین ہیں، ان کو دعوت دو، مسجد کی دعوت دو، مسجد میں لوگوں کو جمع کرو. مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے. الحمدللہ یہ سنت زندہ ہوئی، اور ایسے پرفتن ماحول میں ایک سنت زندہ کرنا بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے. پیارا آقا و مولا کو نہ جانے کتنی خوشی ہوتی ہے. حافظ صاحب کا ظاہر دیکھا، امامے کے ساتھ، سنتی لباس کے ساتھ، کوئی شامیانہ نہیں، کوئی ہٹھو بچوں کی کوئی آوازیں نہیں، کتنے رسومات سے بچتا ہوا نکاح نظر آتا ہے. اتنے الحمدللہ ہمارے معاشروں میں ایسے لوگ ہیں نکاح کرتے ہیں اور اس میں بھی اطلاع نہیں کیا نکاح ہو. ہاں، یہ سادگی ہوتی ہے. صحابہ اور صحابیات کے متعلق ہم پڑھتے سنتے ہیں، چلتے چلاتے نکاح ہو گئے. دو چیزیں بڑی آسان ہیں شریعت میں، ایک نکاح، دوسرا حج. اللہ کے نبی نے چلتے چلاتے ارکان ادا کرا دیے، سکھا دیے. آج ہمارا ان محنتوں سے، علماء و قدماء سے ربط ٹوٹ گیا یا کمزور پڑ گیا، تو آج ہمارے معاشروں میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ ان کی شادیاں لاکھوں کی جا رہی ہیں. ہاں، اور ان کے حج نہ جانے کیسے کیسے رسومات سے ادا ہو رہے، عمروں میں لوگ جا رہے ہیں، اتنی بے حیائی اور رویانیت کے ساتھ جاتے ہیں شادیوں میں، منگنیوں میں، ختم قرآن میں، خوشی کی تقریبات میں، نکاحوں میں. آپ شامیانوں میں دیکھیں، ایک طرف جوان لڑکے ہیں، جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں، تصویر کشی ہو رہی. ایک عمل زندہ کرنے آئے تھے، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے ناجائز امور ہو رہے ہیں. علماء لکھتے ہیں جو بلاتے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. کھانے پینے کا نظم ہوتا ہے، نماز کے وقت ان کے وضو کا، ان کے پانی پینے کا سارا انتظام کیا جائے. ایک عمل کے لیے یہ ساری یعنی خرابیاں پیدا ہو، یہ اچھا نہیں. نگاہ کو عین سنت بتایا، पसंदीदा चीज बताई, आंखों की और दिल की तदहीर का जरिया बताया, और बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ पर खड़े होकर तरबीब दिया, माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबाहत फलियतज़व्वज, ये आपने उसकी तरबीब दी है। और उलमा ने लिखा है कि बाज़ दफ़ा निकाह वाजिब हो जाता है जब आदमी के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाए। निकाह इतना आसान था कि चलते चलाते निकाह हो जाता, सिर्फ दो खर्चे बताए हनफियों में, एक मेहर का देना वाजिब है, दूसरा वलीमा करना सुन्नत है। सालों से हमारे यहाँ हजार में निकाह हो रहा था मेहर, अब हजार पे मेहर यानी निकाह होता नहीं हनफियों के नजदीक, तो मशवरा करके 3,000-4,000 की मेहर कर दी। इब्ने असीर ने लिखा है मेहर का मुतालबा करना भी ये भी पसंदीदा नहीं। हाँ, आज तो मेहर फातिमी दो, ये दो, ये दो करते, और अच्छे अच्छे लोग आपको इसमें मुलव्वित मिलेंगे, पैगाम आया आपको मंजूर हो गया, पूछ रहे आप क्या मेहर देंगे, कहे इतनी, बस इस पर बिस्मिल्लाह कह दे। बहस मुबाहता का एक मैदान खड़ा कर देते। हनफियों के नजदीक 3,500 रुपए पे यानी निकाह हो जाता है। अब जिसकी जितनी इस्तेदाद है अपनी इस्तेदाद पर दे, लड़की वालों को मुतालबा करने की इजाजत नहीं है। फतावा आलमगीरी में लिखा है जिसकी इस्तेदाद है वो बंगला भी दे, जमीन भी दे, माल भी दे, सोना भी दे, महल फातिमी भी दे, लेकिन एक ही बात को पकड़ लेना। हमारे हजरत शेख यूसुफ साहब फरमाते थे माशरों में बिगार इतना आ गया कि अच्छी अच्छी चीजें ले लेते हैं, सुन्नत है, सुन्नत है, शरीयत है, और मिजाज के खिलाफ है तो छोड़ देते हैं, मीठा मीठा ले लेते हैं, करवा करवा फू कर देते हैं। अब वही पैगम्बर इस्लाम ने जहाँ मेहर फातिमी दी है वहां आपने बहुत सारी चीजें इसके पीछे बताई। तो दोस्तों बुजुर्गों, एक एक मौका होता है ताकि हम इन रसूमात से, खुराफात से अपने आप को, अपने लड़कियों और लड़कों को बचाने वाले बने। और शादी जो है ये तो एक सुकून और राहत का जरिया है। हलाल में जितना सुकून मिलेगा आदमी को, नाजायज में कभी भी सुकून नहीं मिलता। जिल्लत जब होती है माल पानी की तरह बहता है, न जाने रसूमात और खुराफात और खानदानी पीढ़ियां लगती। हाँ, और इस्लामी हुकूमत हो तो बताया किसी नफ्स को जिसको अल्लाह ने मुहतरम बनाया, पाकीजा बनाया, कत्ल की इजाजत नहीं, मगर तीन को, एक किसास के बदले में किसी को अगर किसी ने मारा तो किसासर मारा जाएगा, या फिर कोई हद है उस पर तो हद जारी की जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी मुसलमान को मार दिया, या फिर मुसलमान मर्द और औरत है, शादीशुदा है, जिना किया तो उसको संसार किया जाए। कि इतनी खतरनाक वाइद कुरान पाक में तफसील में उलमा ने बयान किया। ये मौका है कि सारी चीजों से आदमी बचेगा। लितस कुनु इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतन वरहमा, सुकून का जरिया निकाह को बताया, सुकून का जरिया जिक्र को बताया, सुकून का जरिया अल्लाह के नबी पर उतरे हुए दीन और किताब को बताया कि चार चीजों में सुकून है। सुकून और कहीं आपको नहीं मिलेगा। और फरमाया कि जवानी में अल्लाह ताला मुवद्दत डाल देते हैं, बुढ़ापे में रहमत डालते हैं। हाँ, कि जब तक मियाँ नहीं आएगी औरत अकेले घर में इंतजार करेगी, उसके बगैर खाएगी नहीं, ये रहमत होती है एक दूसरे में, कोई सहारा नहीं, एक दूसरे का सहारा बने। हाँ, रात में चला नहीं जा, दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दूसरे की खिदमत करेंगे। ये रहमत अल्लाह ने निकाह में रखी, हलाल में रखी। इन्ना ज़मन निकाही बरक अयसरहु मौरा, सबसे ज्यादा बरकत वाला, खैर वाला, भलाई वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम मशक्कत उठाई जाए और कम से कम खर्च किया जाए। उलमा ने लिखा है कि अगर फख्र के लिए दावत की तो ऐसी दावतों में जाना मना है, रियाकारी के लिए दावत की ऐसी दावतों में शिरकत करना मना है। चाहे वलीमे के उनवान से हो, शादी के उनवान से हो, या मंगनी के उनवान से हो, या हज के उनवान से हो, या उमरों के उनवान से हो, या और कोई खुशी की तकरीबात के उनवान से हो, या और किसी ने ऐसे ही दावत की, लेकिन नाम और नमूद के लिए की, तो कहा कि अच्छे लोगों को ऐसी दावतों में शिरकत करने से गुरेजा करना चाहिए ताकि लोगों को इबरत ले। मान अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया कि जब चाहे जहां चाहे पानी की तरह बहा दे, मां तो इसलिए दिया है कि अल्लाह का कलमा, अल्लाह का नाम, अल्लाह की किताब दुनिया में बुलंद हो जाए, इसलिए हर मोमिन मर्द औरत को अल्लाह ने माल दिया। सीरत में आपको मिलेगा सहाबा का सबसे ज्यादा माल अल्लाह के नाम को बुलंद करने में लगा, अल्लाह ने इनको जरिया बनाया। और अल्लाह का वादा है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। दुनिया असबाब से जोड़ी, हमारा जान माल लगेगा, हमारी तरबियत होगी, बाहर माहौल बनेगा। दूसरे नंबर पर लोगों की जरूरियात में लगा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना माल दावत पर, कुरान पर लगाया, वहां कहीं मर्द औरतों के निकाह में अल्लाह के नबी ने ताऊन किया और ताऊन करवाया है। काम करो अलग हुआ, नेकी का काम ये है कि इसमें एक दूसरे का ताऊन करो, मदद करो, सही चीज वजूद में आई। हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने इतना माल दिया कि न जाने कितने लोगों के मेहर आपने अदा करा। ये माल लगाने का जरिया उम्मत के जरूरियात में काम आना, कितने लोगों के दवाओं में आपने माल लगाया, जरूरियात में माल लगाया, जहां आपने सहाबा की जरूरियात में सफरों में माल लगाया वहां आपने ही लगाया। ये है कि जहां मौका मिला माल लगाए, इस्तेदाद अपनी जितनी है इतनी लगाए, तीसरे नंबर पर अपनी जरूरियात में लगाए। एक आदमी अपनी जरूरत लेकर हजरत उस्मान के पास गया, अपनी अहलिया से कह रहे कि जो चिराग है इसमें बत्ती आपने ज्यादा निकाली, इसे कम करो। वो दरवाजे के पीछे बात सुन रहा है, कहा क्यों, कहा इशराफ है। हाँ, तो उसे कम कहा है, तो बाहर वाला सुन रहा है जो अपनी जरूरत लेकर आया था कि जब एक मामूली चीज में जिसको इस्तेमाल खुद कर रहे हैं अपनी बेगम को रोक रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत पूरी करेंगे। जा रहे थे, कहा भाई आप क्या है, कहा ऐसा ऐसा मसला है, कहा मेरा जाती मामला है, पर मैं आपकी क्या जरूरत है, कहा ये है तो पूरी कर दी। अपनी जरूरियात में कम लगाना और लोगों की जरूरियात को पूरा करना, ये इस्लाम ने हमें तालीम दी है। हमारी जरूरतें तीसरे नंबर पर है। आज भी कई अल्लाह के नेक बंदे और बंदियां आपको इस उसूल पर काम करते हुए नजर आएंगे। ये तरीके ही कार है, इससे सारे बदगुमानियां खत्म हो जाती है, आपस का मेल मिलाप इससे होता है, भाईचारे इससे वजूद में आती है। यहां तक भरकर सीरत में लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमा के चले गए, मक्का वाले अभी मुसलमान नहीं हुए, वहां कहत साली आई, आपको वास्ता दिया रिश्तेदारी का, आपने अनाज कपड़े वगैरह जमा करा के मदीने से मक्का में पहुंचाए। हालांकि आपने जब दावत दी तो यही मक्का वालों ने आपको बेसहारा करके निकाला है, और सहाबा को न जाने कैसी कैसी अजियत का सामना और हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन जब यही बिरादरी वालों पर कहत साली आती है तो पैगंबर इस्लाम कंधे की तहरीक करके इनका ताहुन करते। ये है इस्लाम, किसी को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी के काम आ जाने का नाम इस्लाम है, किसी नंगे को कपड़ा पहनाने का नाम इस्लाम है, किसी का काम निकालना बगैर गर्ज के इस्लाम है, किसी भी सहारे का सहारा बन जाना, इसका नाम इस्लाम है। इन्हे तावन तकवा अबूजर, एक वक्त आएगा कि लोग अच्छाई से रोकेंगे और बुराई की दावत देंगे, भर में अल्लाह के नबी ऐसा होगा। कहा वकजाली का अशद, इससे भी ज्यादा सख्त होगा। आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे कि अच्छाई भी लोग यानी मिटा रहे और गुनाहों की दावत दे रहे। फरमाए एक वक्त आएगा कि संगीन आम हो जाएगा, जेब जेब में हम बातें में संगीन डाल दिया, तस्वीर कशी के आलात जेब जेब में आ गए। नक्शे मोबाइल का इस्तेमाल ये गलत नहीं है, गलत इस्तेमाल करना ही गलत और नाजायज है। कुरान है तो मस्जिद में मोबाइल निकाल के कुरान पढ़ रहे, मुफ्ती साहब तो कहेंगे कुरान आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, फिर इसकी क्या आजमत, इनकी क्या अहमियत रहेगी। सफर में है, कहीं परेशानी में है, कोई दिक्कत है, कोई मजबूरी है, तो आप पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं। ये नई नई चीज है। शैतान के पास 70,000 इमाम रिजाले फरमाते रूहानी दाव है, जिससे उम्मत को राह से बेराह करते। किसी भी तरह इनका ईमान कमजोर करो, इस्लाम पर बाकी न रहे। ये शैतानी एक दावत है, शैतानी एक कुव्वत है। इन्ने शैतान लकुम अदुवन फत्तखिदूहु अदुवा, कुरान कहता है तुम्हारा बिल्कुल खुला दुश्मन है, तुम भी उसे अपना खुला दुश्मन मानो और समझो और उसकी तरकीबों से और उनके दाव पेट से और उनके मकरूहात से अपने आप को बचाओ। और फितन दौर में इन माहौल और फितनों से बचने के लिए पड़ोस मुल्क के हमारे बहुत बड़े पीर साहब पीर जुल्फिकार अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह ने दो गार दिए हैं, एक मदारिस का गार, एक तबलीग का गार, इसमें जो लगेगा अल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे। सूरह कहफ की तफसीलों में आप पढ़ते सुनते होंगे, चंद जवानों ने अपने ईमान के हिफाजत के लिए गार में गए, 309 साल अल्लाह ने नींद तारी की, फिर जिंदा किया अपनी कुदरत दिखाने के लिए। अल्लाह ने वहां इनका ईमान महाफिज और हिफाजत से रखा, एक गार अल्लाह ने दिया। जान और माल से अपने आप की, अपनी नस्लों की, उम्मत की जिम्मेदारी हम पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो तो होके रहने वाला है, अकलमंदी ये है कि हम इन चीजों से बचने वाले हैं। अलगैना युम्बितुल निफाक कमा युम्बितुल माअज़्ज़र, के निफाक से यानी गानों से दिलों के अंदर निफाक इस तरह परवान चढ़ता है जैसे मूसलाधार बारिश से बंजर जमीन लहला जाती, तो होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें शादियों और मंगलों से निकलती जा रही, जो है उनके निकालने के जिम्मेदार हम हैं। एक तो गुनाह है, नफ्से गुनाह भी खराब, गुनाह पर न रोकना इससे ज्यादा गुनाह बताए। खुद उन्हीं के नबियों की अल्लाह ताला ने जुबानी पर लानत कराई, जलालैन में लिखा है, इसलिए कि गुनाह देख करते हुए देखते थे फिर भी नहीं रोकते। इसने कहा कि भाई नमाज जिंदा करो, रोजा जिंदा करो, तस्बीह जिंदा करो, गश्त जिंदा करो, ताकि गुनाह खत्म हो जाए उम्मत से। अगर हमने ये जिंदा न किया और गुनाहगारों को और आसियों को गुनाहों से न रोका, तो मुफस्सिर आगे फरमा दे इनके जवानों को अल्लाह ने बंदर बना दिया था और उनके बूढ़ों को अल्लाह ने खिंजीर बना दिया था। और शेख एरू साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब में मैंने पढ़ा, मौलाना वसीहुल्लाह साहब ने एक रिवायत की तहकीक कराई थी, हजरत लिखते हैं अगर इस उम्मत ने भी उम्मत को गुनाहों से और नाफरमानियों से न रोका और एक दूसरे के इज्जत पर हाथ मारने से न रोका तो ये तो मरेंगे, इनको दफन किया जाएगा, लेकिन नफ़ उला में जब उठाए जाएंगे सानिया में ये लोग, तो अपनी कब्रों से गुनाह से न रोकने वाले भी बंदर और खंजीर की शक्ल में उठेंगे। बड़ी सख्त वईद है। फजाइल तबलीग में हजरत ने ऐसी रिवायत साथ पेश की है, ये हम सब के लिए ऐसे उलमा तबलीग वालों खानका वालों का काम नहीं है, हम सब कर्मा वो है, हम सब का एक काम है। या अय्युह रसूल बल्लिग, ए नबी जी हमने जो आपको पैगाम दिया आपने इसकी अगर तबलीग न की तो आपने हमारी रिसालत का हक अदा न किया। हम उस नबी को मानने वाले हैं, उस नबी का कलमा करते हैं, तो हमारे भी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अच्छाइयों को जिंदा करें, मुनकरात पर काबू कर दे और रोकने की फिक्र और सही और कोशिश करें। अपने अपने इस्तेदाद के मुताबिक हम तमाम पर जिम्मेदारी लागू होती है। अगर हम इसी तरह बैठे रहेंगे तो एक वक्त आएगा खुशी गमी तो सबके घर में आती है, तो पिज्जा पिज्जा में जहर होती है, तो ये सारी चीजें सबके घरों में आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए अभी से पानी आ रहा है तो पानी को रोकथाम की स्कीम करनी पड़ेगी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इसी पर उठाया और उसी पर छोड़ के गए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलजुल कर आपके लिए हुए इस काम को पकड़ कर अपनी जात से लेकर अनफुसकुम व अहलीकुम नारा व अदिल अशीरतकल अकरमीन लितुंधिर उम्मल कुरा व मन हौलहा या अय्युहन नासु काफ्फतन लिन्नार। नबी को या अय्युहल यहूद व नसारा या ईमान वालों के लिए नहीं भेजा और अल्लाह ने खिताब नहीं किया, बल्कि कियामत तक आने वाले मर्द औरतों के लिए, चाहे अपने हो या पराए हो। नास का माना मुफस्सिर फरमा उसमें सब आते, हम तो सबके लिए आए थे। तो खरीजत मिलना सही हैरत मिलना, सिर्फ हम अपने घर में इलाज और सूबे और स्टेट के लिए नहीं, अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए हमें तो भेजा है। हाँ, कब होगा जब अपनी जात से हम निकलेंगे, तैयार होंगे इन चीजों पर फिक्र और मेहनत करेंगे। और उसके साथ साथ दोस्त बुजुर्गो आपस में एक दूसरे की इज्जत करना, अदब करना, तकरीम करना इस्लाम की तालीम है। एक मोमिन की इज्जत करना, हाँ, फरमाए सिबाबुल मोमिन फुसूक व किताहु कुफ्र, मोमिन को गाली देने वाला फासिक ही होगा। कोई अच्छा आदमी मोमिन को कभी बुरा नहीं कहे, और मोमिन को धारदार चीज दिखाने वाला काफिर होगा, कोई मोमिन मोमिन को नहीं मारेगा। किसी भी गुनाह की सजा अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जहन्नम में हमेशा रहेगा, मोमिन को मारने वाला जहन्नम में हमेशा रहेगा। तीन और उलमा ने बयान की, या तो हमेशा रहेगा, या फिर लंबी मुद्दत के बाद निकाला जाएगा, या फिर हुकूक और इबाद का मामला है, अगर वो यानी मकबूल माफ कर दे तो ठीक है, वरना फिर वो सजा काटने के बाद ही निकलेगा। अब वो कितनी लंबी मुद्दत है, खालिदीन तो कहते हमेशा हमेशा के लिए। एक सहाबी जन्म में गए, हजरत उसामा बुखारी शरीफ की रवायत, एक आदमी ने कहा अस्सलाम अलैकुम, फिर भी इनको कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपने बुरा किया, लिखा है इनकी मौत अच्छी नहीं आई। कौन है, कौन से काम में गए थे? दूसरा वाक्या साहिब जलाल ने मिलहा का लिखा कि सामने से आया और सलाम का और कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा आपस में इस्लाम से पहले कोई दुश्मनी थी, इस्लाम के जाहिर करने के बावजूद भी मार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापसी में आए, कहा हमारे लिए इस्तग़फ़ार करो, कहा आप खामोश रहे। फिर उनका इंतकाल हो गया, हाँ देखिए उनका इंतकाल हो गया, कब्र में दफन किया, कब्र ने नहीं लिया। कहा अब क्या करें, तो कहा डालो पहाड़ों पर, आने वाले उम्मत के लिए इबरत बने, कि मुसलमान पर हाथ उठाना है तो काफिरों का काम होता है। तीसरा वाकया साहिब जलाल ने आयत की तफसील में लिखा कि इसी तरह एक आदमी ने इनको कत्ल कर दिया, फिर कत्ल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कारगुजारी सुनाए, आप जाते हुए हिदायत करते, वापसी में कारगुजारी लेते, कहा इस तरह हुआ, कहा तूने बहुत बुरा किया, लिखा है कि इनकी मौत अच्छी नहीं हुई। कौन है, किनकी सोहबत में रहे, कौन से काम में निकले हैं? छोटी छोटी बातों पर धारदार चीज ले आना, माँ बाप की बेअदबी और बेइज्जती करना कुरान ने मना किया। चंद उमूर ऐसे हैं जिससे कुरान ने आठवें पारे में बिल्कुल मना कर दिया। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, माँ बाप की बेअदबी न करना, और इसी तरह मोहतरम और अच्छी जान को कत्ल न करना, जिसको अल्लाह ने मोहतरम बनाया, अपने आप औलाद को कत्ल न करना इखलाक और तंगी के यानी डर की वजह से। अल्लाह फरमाते नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, तुम्हें भी इनको भी रोजी देते हैं। आजकल दोस्तों बुजुर्गों नई नई दवाएं चल रही हमल गिराने की, मुफ्ती शफी साहब ने लिखा ये सारा उसी में आएगा, सारा गुनाह उनके हाथों में आएगा कियामत के दिन। तो उसके साथ साथ नेक लोगों की माँ बाप की इज्जत और अदब करना, किसी का मजाक और मस्ती करना ये मना है। अब निकाह हो जाएगा, मुबारक ताली देने को कहा, अब दुल्हा को ले जाते हैं, कंधे बिठाते हैं, कोई चुटिया भरते हैं, कोई मारते हैं, तो ये मना है। मुबारकबादी दे, मुसलमान के यहाँ खुशी है तो मुबारकबादी का हुक्म दिया, मुसलमान के यहाँ गमी है, कोई मैयत वगैरह हो गया तो इनके साथ शिरकत करो, मुसलमान बीमार है तो इनकी यादत में जाने का हुक्म दिया, मुसलमान माले हालात के बहरान में है तो उसकी इस्लाही की तसल्ली करे कि इस्लाम ने तालीम दी है। ये हमारे माशरत के एतबार से अल्लाह के नबी ने ये सारी हिदायतें हमें अता की है। तो दोस्तों बुजुर्गों ये सारी चीजें हमारे अंदर आए, उम्मत के अंदर आए, इसके हम सब जिम्मेदार हैं। और शैतान को सबसे ज्यादा अदावत दो चीजों से है, एक मियां और बीवी में कि जब इनका इख्तलाफ होता है तो और ज्यादा बातें बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि मामला तलाक तक पहुंच जाए। आज अल्लाह हिफाजत फरमाए, तलाक होती है फौरन कोर्टों में जाते, अमली तौर पर हम बता रहे कि हम शरीयत को नहीं मानते, अभी मुकद्दर की बात थी, मुकद्दर का मसला था, फिर भी हमारे माशरे में कई उलमा कई दानिश्वर ऐसे हैं माशाल्लाह जो इस लाइन का काम करते, इनसे मसले सुलझा ले, इतनी बेहयाई आम हो जाती है। दूसरा शैतान को सबसे ज्यादा अदावत जो होती है वो पढ़ने पढ़ाने में रखना अंदाजे करके बच्चों को इन चीजों से रोकता है। मियाँ बीवी का मामला वो जानता है, कोई सहले मर्द पैदा हो गया, कोई नेक औरत पैदा हो गई तो गोया के उसकी करी कराई मेहनत सारी अकालत हो जाती, इसलिए कहा इनके अंदर अगर हकम भी बनो तो अदल इंसाफ से काम लो, तू मेहनत तो होता ही रहता है और वो होता ही रहेगा, ये न हो बात आगे न बढ़े, इसके लिए अंदर ही अंदर हम उसे काबू में कर ले, इफ़हाम और तफ़सीर तफ़हीम के जरिए कोई अच्छा रास्ता निकाल। ऐसे औरतों से निकाह करो जिनके सिफत बताए, नेक हो, परहेजगार हो, इज्जत वाली हो, साले हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, एक मर्द को हिदायत दी ऐसी औरत का इंतखाब करे। और लड़की वालों को कहा ऐसे लड़के का इंतखाब करे जो दीनदार हो, ईमानदार हो, नमाजी हो, हलाल पेशा वाला हो, ये हिदायत की गई के उसूल बताए गए, इसके मुताबिक यदि निकाह होंगे शादियां होंगी तो मुस्तकबिल की इनके हाल औलादों पर इनका असर होता है। अल्लाह ताला कही सुने बातों पर हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए और होने वाले निकाह को अल्लाह ताला बेइंतहा मकबूल फरमाए, दुनिया आखिरत की तमाम खैर और खूबियों से अल्लाह इन्हें मालामाल फरमाए, दुनिया आखिरत के तमाम शुरूर से, फितन से, हवादिसात से, मुसीबतों से अल्लाह इनकी भी हमारे भी और पूरे उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत करवाए। मस्जिद बिलाल और मदरसे के लिए चंदे के सिलसिले में पहुंचे हुए हैं।